कौन सी है वो एक चीज जो 2023 में आपके फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर देगी। हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे और आखिर में उस सबसे बड़ी और अहम एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपका फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है 2023 में। दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी और फिन आज़ाद के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आप आपके पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स या और भी कोई पर्सनल फाइनेंस मैटर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7058248602। व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक भी आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2023 की शुरुआत हो चुकी है और हम हमेशा नए साल में कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला साल जो है वो अच्छा रहे। और यहाँ पर हम हमारे फाइनेंशियल जर्नी के बारे में बात करेंगे। हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल जर्नी, फाइनेंशियल लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी फॉर श्योर। 100% वाली बात जो है वो हम करेंगे। अब जब मैं ये कह रहा हूँ तो आपको लगेगा कि बाप रे, कोई बड़ा मंत्र हमको सुनने मिलेगा या कुछ बहुत ही अच्छा स्टॉक पिक हमको पता चलेगा या कोई अच्छा जो ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड है, सेक्टरल कोई पिक है वो पता चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो तीन चीज़ें मैं आपको बोलूँगा वो बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी सिंपल और बेसिक है कि हम सुन के ही सोचते कि अरे यार, ये क्या फिर से वही चीज़ें बता रहे। हमको तो ये सारी चीज़ें पता है लेकिन आप ये चीज़ें अभी भी फॉलो नहीं करते हैं। मैक्सिमम 70-80% जो लिसनर्स है पॉडकास्ट पे वो इन तीन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये करना चालू करेंगे तो आपके फाइनेंशियल जर्नी में डेफिनेटली चेंज आएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें कौन सी है? सबसे पहली चीज़ है जो मैंने कहा 70-80%, इसको तो मैं कहूँगा करीबन 90-95% लोग ट्रैक नहीं करते हैं, वो है कि आपको आपका कैश फ्लो हर महीने का पता होना चाहिए और वो आपके पास में किसी भी प्रकार के लिखित फॉर्मेट में चाहिए। फिर चाहे वो आपके मोबाइल में हो, लैपटॉप में हो या आप एक नोटबुक मेंटेन कर रहे हो, आपका जो कैश फ्लो है वो आपको पता अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। फिर चाहे आपको स्टॉक मार्केट का कितना भी ज्ञान हो, म्यूचुअल फंड्स का कितना भी ज्ञान हो, आप कितने ही बड़े एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो या लोगों को अगर आप बहुत एडवाइसेस देते हो अपने छोटों को बड़ों को, लेकिन आप अगर आपके कैश फ्लो को ही नहीं समझते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कैश फ्लो को समझने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपके पास में डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए कि आपके इनकम कितनी आई है, उसमें से आपके खर्चे कहाँ कहाँ पर हुए हैं, छोटे से छोटा खर्चा, और उसमें आपने एनालिसिस करना चाहिए कि आपके नीड्स कितनी है इसमें से और वांट्स कितने हैं। नीड्स और वांट्स यानी क्या? नीड्स यानी जो जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, जैसे कि पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस होगी, ये सारी जो नीड्स है इसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और वांट्स क्या है? वांट्स यानी वो सारी चीज़ें जो हम एडिशनली खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई मैकडोनल्ड्स में जाके बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, घूमने चले गए या कुछ नई गैजेट्स खरीद लिए या कुछ और कर लिया, ये वांट्स है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मैकडोनल्ड्स का बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाओगे तो फिर आप जी नहीं सकते या बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ऐसा नहीं है। वो आपका वांट नहीं है, वो आपकी नीड है। इसलिए आपका कैश फ्लो जो है वो एग्जैक्ट लिखा होना चाहिए। कितने लोगों के पास में पिछले पूरे एक साल का कैश फ्लो ठीक तरीके से लिखा हुआ है? उसमें से क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपने कहां पर नीड्स पे खर्च किया है, कहां पर वांट्स में खर्च किया है? नीड्स को तो आप कम नहीं कर सकते, आप वांट्स को जो है उसमें कर सकते हैं। उसमें से भी इन्वेस्ट आप कितना कर रहे हैं, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट हो रहा है, ये सारा का सारा कैश फ्लो, कितना SIP है, कितना आप LIC में डाल रहे हैं, कितना इंश्योरेंस में डाल रहे हैं, कितना FD में डाल रहे हैं, कितना सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है पूरा का पूरा कैश फ्लो जो है ये आपके एक नोटबुक में लिखा होना चाहिए या फिर लैपटॉप में लिखा होना चाहिए ठीक तरीके से एक एक्सेल शीट में। अब आपको जैसे मैं शुरुआत में कहा, आपको लगेगा यार ये क्या फिर से वही घिसी पिटी बातें हैं जो कि हमेशा हमको पता ही है ये सब करना पड़ता है। लेकिन ठीक है, मैंने दिमाग में तो रखता ही, मुझे तो सारी चीज़ें पता ही है, लेकिन वैसा सोचने से नहीं होगा। एवरीथिंग दैट गेट्स डॉक्यूमेंटेड गेट्स ऑडिटेड एंड गेट्स इम्प्रूव्ड। अगर आप डॉक्यूमेंट ही नहीं करोगे तो ऑडिट भी नहीं कर पाओगे और उसको इम्प्रूव भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ जो अभी 2023 से चालू करनी है आज ही से, तो आपको आपका जो कैश फ्लो है वो पूरा का पूरा लिखा है, सैलरी कितनी आई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी चाहिए 2023 में, अब फिर से घिसीपिटी बात है बट ये आप नहीं करते हैं, ये भी मैं फिर से दावे से आपको बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि आप जब भी सेविंग्स करते हैं तो आप इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स ऐसा ना करें। अब इतने सारे क्लाइंट्स हैं मेरे जो कि म्यूचुअल फंड SIPs डालते हैं या बाकी भी फ्रीक्वेंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनसे जब डिस्कशन होता है तो उनका कहना होता है कि मेरी इतनी इतनी सैलरी है, मेरे इतने इतने खर्चे हो जाते हैं, बचते इतने हैं, उसमें से भी आधे कर दो तो मैं इतने इतनी की SIP या पर मंथ के स्टॉक मार्केट में या यहाँ वहाँ डाल सकता हूँ। ये कैसे आपने निकाला? आपने आपका इनकम निकाला, उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया, फिर बचते मान लीजिए कुछ 20,000 है, उसमें से भी आपने कहा 20,000 में से तो मैं फिर 5,000 या 10,000 की SIP चालू कर सकता हूँ। ऐसा ना करें। आपके लिए फॉर्मूला होना चाहिए इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अगर आप खास करके यंग एज में है, यंग एज यानी 25 टू 40 या 35, दैट इज कॉल्ड एज यंग एज एज पर द इन्वेस्टमेंट जर्नी, है ना, 45 के ऊपर निकलते हैं, 40 के ऊपर निकलते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे वेल्थ क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन से जा करके वेल्थ कंजर्वेशन वाले फेज में आ जाते हैं। तो अगर आप इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर करते हैं शुरुआत में आपके करियर के, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको आखिर में। किसी को भी यहाँ पर 60 साल की एज तक काम नहीं करना है, सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए है, सभी को चाहिए है कि वो एक दिन अपने बॉस की ना सुने, या फिर अगर कुछ और भी आपका प्रोफेशन है उसमें आपको टेंशन ना हो, चीज़ें ऑटो मोड में चले, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, अगर वो आपको चाहिए है तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। अब फिर से अगर आप सुन के ये सोचते हैं कि यार ये सब चीज़ें हमको पता ही है, करेंगे कभी ना कभी करेंगे, तो फिर से वो चीज़ नहीं होगी। और वही है हमारा तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो हमें 2023 में तो करना ही है, वो है एग्जीक्यूशन, एक्शन लेना है, एग्जीक्यूट करना है, सही में वो चीज़ करनी है। आप कितना ज्ञान लोगे स्टॉक मार्केट का, कितना ज्ञान लोगे, न्यूज़ चैनल देखोगे, पेपर पढ़ोगे, ये स्टॉक वो स्टॉक, ये आया अंबानी ने ये कहा, अडानी ने वो कहा, सारी दुनिया भर की नॉलेज ले लोगे, म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है, उसमें वो होता है, LIC में ऐसा है, ये रिटर्न दिया, वो रिटर्न दिया, सारी दुनिया भर की नॉलेज आप गेन कर लोगे, बट एंड में होगा क्या उससे? अगर आपकी सैलरी अगर 1,00,000 रुपया है और अभी भी आप सिर्फ 5,000 रुपये या 10,000 रुपये की SIP डाल रहे हो, और अगर आप दुनिया भर का ज्ञान ले रहे हो स्टॉक मार्केट का, उससे आपको मिलने क्या वाला है? अगर आप एक्शन लोगे, एग्जीक्यूशन करोगे, आपका SIP को बढ़ा के करीब 30,000 या 40,000 करोगे, या ऐसा कुछ प्लान बनाओगे, पर्सनल फाइनेंस का प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूट करोगे, तब जा करके आप रियल सेंस में कुछ कमा रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं खुद के लिए। बहुत सारा स्टॉक मार्केट का ज्ञान लेके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। सभी को पता है आजकल कि इंश्योरेंस में सिर्फ इंश्योरेंस लेना चाहिए, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लेना चाहिए, लेकिन जितने भी लोग सुन रहे हैं उसमें से 60-70% लोगों के इंश्योरेंसेस में हर महीने काफ़ी ज़्यादा 10-15,000 रुपये जाते हैं, मिनिमम मैं अगर बोलूँ तो साल के तो करीबन 30-40,000 रुपये तो जाते ही है, और वहाँ पर हम इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट वाले प्रोडक्ट्स में फंसे हुए हैं, जहाँ पर इंश्योरेंस की भी वैल्यू बहुत कम है, और आखिर में जब मैच्योरिटी आती है उस प्लान की, तो हमें जो पैसे मिलने वाला है वो भी इन्फ्लेशन को और महंगाई को बीट नहीं करता। अब ये ज्ञान तो सभी को पता है, लेकिन हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, हम हमारी वो पॉलिसीज़ बंद करके इंश्योरेंस को अलग और इन्वेस्टमेंट को अलग नहीं करते हैं, सालों साल वो चलते रहता है। किसी को बताने की अगर बारी आएगी तो हम डेफिनेटली बताएंगे बहुत छाती चौड़ी करके कि यार ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन हम खुद क्या वो चीज़ कर रहे? ठीक है, अगर हम कर भी रहे हैं तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप SIP डाल रहे हैं 2,000 की, 5,000 की, 8,000 की, और आपकी सैलरी 70-80-90,000 रुपये है, उसकी क्या वैल्यू है? क्या ही आपको पैसे वो कमा के देने वाली है, 5,000 की SIP कमा के देने वाली है, थोड़ा अमाउंट आएगा, बट जहाँ पर आप आज की सैलरी जितना आप ले रहे हैं, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उन सारी चीज़ों के सामने 5-10,000 की SIP से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सही में बहुत नॉलेज रखते हैं और बहुत उसमें सोचते हैं, तो आपको आपकी मिनिमम 25-30,000 की या मिनिमम 20,000 की तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हर महीने की, तब जाके आपके गोल्स मीट होंगे। थोड़ा सा म्यूचुअल फंड ले लिया, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट ले लिया, थोड़ा सा स्मॉल केस ले लिया, थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी ले लिया, थोड़ा सा FD ले लिया, थोड़ा सा इंश्योरेंस ले लिया, थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा वो ले लिया, और दुनिया भर का ज्ञान अगर आप ले लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। सिस्टमैटिक वे में आपको आपका पर्सनल फाइनेंस का प्लानिंग करना चाहिए। तो ये है पॉइंट नंबर 3। अगर आप आपका एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, काफ़ी फ़ोन आते हैं मुझे इस पॉडकास्ट से और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शुरू करने के लिए। 15 दिन बीत जाते हैं, 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, बस वो सोचते ही रहते हैं कि हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं करूँगा। फिर आखिर में 6 महीने हो जाते हैं, कोई शुरू करता है, कोई नहीं करता। तो अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो इतना सारा सोच के क्या करोगे? आखिर में तो पैसा आना चाहिए ना, अकाउंट में पैसा बढ़ना चाहिए, तो ही तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। नॉलेज गेन करके फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन लीजिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। अगर शुरू है तो उसको एनालाइज कीजिए। सबसे पहले पहला पॉइंट जो है कि कैश फ्लो को समझिए। दूसरा पॉइंट है कि पहले सेविंग्स कीजिए, फिर एक्सपेंडिचर कीजिए। और तीसरा पॉइंट है कि ये सब सोचने के बाद, कैश फ्लो देखने के बाद, सब करने के बाद में एक्शन लीजिए। एक्शन आज ही लीजिए, तुरंत लीजिए, तो ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपकी जो SIP की वैल्यू है, क्या है वो सही में आपके सैलरी को, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को, आपके खर्चों को मैच करती है? आपको आगे आने वाले 10-15 सालों में कितना खर्चा रहने वाला है, ये सब आपने कैलकुलेट किया हुआ है? अगर किया हुआ है तो उतना आपने क्या उसके लिए एक्शन लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो 2023 की शुरुआत दोस्तों अगर हम इन सारी चीज़ों से करते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा होगा, हमारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों साथ साथ चलेंगे। तो ये है 3 पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है। कल को मैं कोई टेक्निकल एस्पेक्ट डिस्कस करता हूँ या कोई स्टॉक मार्केट न्यूज़ रिलेटेड एस्पेक्ट डिस्कस करता हूँ, उन तीनों भी चारों भी चीज़ों से ज़रूरी ये चीज़ है कि आप एक्शन ले, आपके पर्सनल फाइनेंस को समझें। और भी कोई डाउट होगा आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक यहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। साथ ही में हमारा इंग्लिश का पॉडकास्ट भी चेक कीजिए, यूट्यूब चैनल भी चेक कीजिए, और हमारे ऐप के ऊपर में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसको भी आप रेफर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आखिर तक सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए, और मैं जल्द मिलूँगा आपसे। थैंक यू।